नमस्कार भारत, 30 अगस्त दिन गुरुवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन आज से, पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे प्रधानमंत्री।
तो इसके अंदर 7 देश हैं जो एक तरह से जिनकी एक्सेस और सब कुछ बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई है।
भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी हमले में 4 जवानों की मौत, सुनेंगे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर पुणे कोर्ट में क्या हुआ।
पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि एल्गार परिषद जो है ये दिखाने के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम था कि पीछे पीटीआई माओइस्ट जो है वो काम कर रही थी।
और दुनिया जहान में बात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की चुनौतियों की।
पाकिस्तान जो बड़े अरसे से बहुत से दुश्वारियां फेस कर रहा है, सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुनिए सर्वप्रिय सांगवान से। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को फिर से शुरू करने का कोई कारण नहीं दिखता है, लेकिन उनके रक्षा सचिव जेम्स मैटिस ने इस हफ्ते की शुरुआत में संकेत दिया था कि युद्ध अभ्यास फिर से शुरू हो सकता है। प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन ट्रंप ने ट्वीट किया है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ उनके रिश्ते सहज हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य अभ्यास बहाल करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं था। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि वह 2 महीने पहले सिंगापुर में किम जोंग उन के साथ हुए अपने शिखर सम्मेलन के बाद सद्भावना के संकेत के रूप में अभ्यास रद्द कर रहे हैं। श्रीलंका की एक अदालत ने पुलिस को देश के सर्वोच्च रैंकिंग सैन्य अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। एडमिरल रविंद्र विजयगुणतंतने पर श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान 11 लोगों के अपहरण और हत्या में कथित तौर पर शामिल अपने अधीनस्थ एक अधिकारी को बचाने का आरोप है। अधिकारी चंदाना प्रसाद को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया था। श्रीलंकाई सैनिकों और अलगाववादी तमिल विद्रोहियों के बीच 26 साल के युद्ध के दौरान सरकार और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ सदस्यों पर अत्याचार और हत्याओं में शामिल होने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। ये गृह युद्ध 2009 में खत्म हुआ, जिसमें कम से कम 1,00,000 लोग मारे गए और कई लापता हो गए। कनाडा और अमेरिका शुक्रवार तक उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते के नए संस्करण पर समझौते की उम्मीद कर रहे हैं। इसी को लेकर इस हफ्ते अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रारंभिक समझौता हो चुका है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि चीजें बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडू ने कहा कि शुक्रवार तक सौदा होने की संभावना है। वहीं कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा, मुझे लगता है कि दोनों देश बहुत सद्भावना के साथ बातचीत के लिए आ रहे हैं। कम से कम कनाडा जरूर ऐसा कर रहा है। हम एक दूसरे की स्थिति को समझते हैं और दोनों पक्षों को पता है कि क्या चाहिए। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि हम देश का हित देख रहे हैं और ऐसे समझौते की तलाश में हैं जो दोनों देशों के लिए अच्छा हो। कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के शब्द। अर्जेंटीना की सरकार ने IMF से $50 अरब का कर्जा जल्द से जल्द देने को कहा है। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट ने महंगाई को बढ़ा दिया है और अर्जेंटीना की मुद्रा का मूल्य इस साल अब तक 40% गिर चुका है। एक टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री ने कहा कि IMF फंड जल्दी मिलने से अनिश्चितता खत्म होगी और बाजार में विश्वास बहाल होगा, लेकिन चिंताएं हैं कि अर्जेंटीना इस भारी उधार को चुका नहीं सकता है और पत्रकारों का कहना है कि IMF बेलआउट जल्दी मांगना बढ़ती निराशा को दिखा रहा है। जब मई में ऋण की शर्तों पर सहमति हुई थी तब राष्ट्रपति मैक्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी और पैसे का उपयोग करने की योजना नहीं है। बाजार के जानकार मार्सेलो ट्रोवाटो ने कहा, बाजार आज सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहा है और ना ही आर्थिक मामले संभाल रही टीम पर। मुझे लगता है कि यदि वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष लुइस कैपुटो अपना पद नहीं छोड़ें तो बाजार की स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि ये सब अर्थव्यवस्था के लिए उठाए कदमों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था को संभाल रहे लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। बाजार के जानकार मार्सेलो ट्रोआटो के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि व्हाइट हाउस के प्रमुख वकील डॉन मैकगहन नए कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के बाद अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने मैकगहन के जाने की वजह नहीं बताई। इस महीने की शुरुआत में यह पता चला था कि मैकगहन ने ट्रंप की कैंपेन टीम और रूस के बीच मिलीभगत को लेकर हो रही मुइलर जांच में काफी सहयोग किया था। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। आज से नेपाल की राजधानी काठमांडू में चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक 7 देशों का संगठन है, इनमें भारत के 6 पड़ोसी देश और थाईलैंड शामिल हैं। इस सम्मेलन में किन बिंदुओं पर बात होगी और इससे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि बिम्स्टेक संगठन की स्थापना कब और क्यों हुई थी। यही जानने के लिए हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने बात की दक्षिण एशियाई मामलों के जानकार और नेपाल समेत कई देशों में भारत के राजदूत रहे राकेश सूद से।
बिम्स्टेक की स्थापना आज से करीब 21 साल पहले हुई थी, 1997 में, और इसका जो वर्तमान जो इसकी शक्लो सूरत है वो एक तरह से 2004 में एक तरह से सेटल हुई, जब एक समिट प्रोसेस और वो सब चीजें तय हुई। अब उसके अंदर ये था, उसके अंदर साफ साफ एक मुद्दा ये भी था कि सार्क जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में साउथ एशिया में है, सार्क के अंदर कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर कई चीजों के अंदर अड़चन आती है। और हमको ये भी था कि एक लुक ईस्ट पॉलिसी है हमारी जो नरसिम्हा राव के वक्त से शुरू हुई थी, तो उसके अंदर हमारा एक पूर्व की तरफ देखने का जो था तो उसको लेकर, और जो हमारे बे ऑफ बंगाल के जो देश हैं उनको लेकर बिम्स्टेक को शुरू किया गया था। तो इसके अंदर 7 देश हैं जो एक तरह से जिनकी एक्सेस और सब कुछ बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई है। श्रीलंका है, दूसरी तरफ थाईलैंड है और म्यांमार है और बांग्लादेश है और इंडिया है, और 2 और देश हैं नेपाल और भूटान जो लैंडलॉक्ड हैं, पर उनकी भी पोर्ट एक्सेस जो है वो बे ऑफ बंगाल के थ्रू ही है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए एक ये नई संस्था का जन्म हुआ।
दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सहयोग संगठन हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग देश जो हैं वो आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए आपस में मिलते रहते हैं। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो ये कितना प्रभावी है और इसे और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है?
एक चीज ये है कि देखिए, इसको अगर हम चाहते हैं और इंडिया अगर चाहता है कि बिम्स्टेक जो है वो ज्यादा एक्टिव हो, तो फिर ये है कि इसका जो सेक्रेटेरिएट है उसको थोड़ा सा बड़ा भी करना आवश्यक हो जाता है। अभी फिलहाल वहाँ कुल 10-12 लोग हैं, अब वो उनके लिए इस किस्म के बड़े बड़े मुद्दों को लेकर जिसमें 7 देशों की सरकारों से बातचीत करनी है, एक तरह से वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उस सेक्रेटेरिएट को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी। दूसरा ये है कि ये भी बातचीत हो रही है कि जापान, जिसके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं इन सब देशों के साथ, और इन सब देशों में जापान का एक आर्थिक सहयोग का भी एक ट्रेडिशन रहा है, तो जापान को इसमें लाया जाए किसी तरह से, ताकि एक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग और सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जो मुल्क है ये सब कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, पर एक तरह से तकनीकी विकास के तरीके से एक तरह से कोई बहुत आगे नहीं है। जापान ये है कि जापान के पास कैपिटल भी है, जापान के पास टेक्नोलॉजी भी है, तो उसके ऊपर भी कुछ बातचीत हो सकती है। पर अब वो किस शक्ल में जापान को साथ में जोड़ा जाता है ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है।
ये थे पूर्व राजदूत राकेश सूद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं नेपाल के काठमांडू, जहां वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे मौजूद हैं। युवराज जी, बिम्स्टेक में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, आज जब ये सम्मेलन शुरू होगा तो भारत के नजरिए से आज का मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है?
आज इनॉग्रल डे है, इसमें अभी राजदूत सूद बता रहे थे, इसमें एक तो 14 डिफरेंट एजेंडा को इन्होंने तय किया है जिस पर सहमति एक समझदारी पत्र में कल अंतिम दिन हस्ताक्षर होंगे। लेकिन इसमें जैसे आतंकवाद, प्रति आतंकवाद का इश्यू, और ऊर्जा, व्यापार और उसमें लगानी, किस तरह ये सब कंट्री मुल्क को जोड़ा जा सकता है इस ट्रेड से, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, ये सब है। और दूसरा ये भी है कि बिम्स्टेक, क्योंकि अभी सार्क बहुत ही कमजोर अवस्था में, उसका फ्यूचर के बारे में अनेक अनुमान हो रहा है, इसलिए भारत ऐसा लगता है कि उसका चाहना है कि बिम्स्टेक ही एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पे आगे बढ़े।
जी, मैं वही पूछना चाह रहा था कि बार बार सार्क संगठन की बात होती है जब स्थानीय सहयोग की क्षेत्र में बात होती है, तो उसके मुकाबले बिम्स्टेक किस तरह से अहम है भारत के लिए भी और उसके सदस्य देशों के लिए भी?
सैद्धांतिक रूप में अब जो कि एक क्षेत्रीय संगठन ये दक्षिण एशियाई कंट्री में है ही नहीं, इसमें तो दक्षिण पूर्वी एशिया के भी दो कंट्री जुड़ गए, थाईलैंड और म्यांमार, इसलिए एक कमिटमेंट के साथ जब तक व्यवहार में इसको इफेक्टिव या प्रभावकारी रूप में स्थापित नहीं करेंगे फिर एक और अवधारणा और कुछ पैसे और कुछ समय की बर्बादी होगी, क्योंकि निराशा जरूर है दक्षिण एशिया सार्क ने प्रभावकारी रूप से काम नहीं किया और भारत और पाकिस्तान के द्वंद के शैडो में इसका निष्क्रियता बढ़ता रहा है, ऐसा मान्यता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस शिखर में दो काम, एक तो एक सेक्रेटेरिएट को ये मजबूत बनाएंगे, उसमें सबका किस तरह सभी मंडल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व हो और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े।
जी, बहुत शुक्रिया वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे जी, हमारे पास समय कम है, हमसे जुड़े थे काठमांडू से। भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियान में कल एक चरमपंथी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों के साथ एक अन्य मुठभेड़ में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन का एक शीर्ष कमांडर की भी मौत हो गई है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
बुधवार को दक्षिणी कश्मीर के जिला शुपियां के वरहमा इलाके में चरमपंथियों ने पुलिस डीएसपी की एक एस्कॉर्ट गाड़ी पर उस समय अंधाधुंध गोलियां चलाई जब पुलिस की पार्टी एक वर्कशॉप पर गाड़ी की मरम्मत करवाने जा रही थी। मारे गए पुलिस जवानों में से 3 जवान कांस्टेबल के रूप में जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में काम कर रहे थे, जबकि एक पुलिसकर्मी एसपीओ या स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर बीते कई वर्षों से पुलिस विभाग में था। हमले में मारे गए 4 जवानों में से 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पुलिस जवानों को अस्पताल ले जाया गया जहां वो दम तोड़ बैठे। पुलिस के आला अधिकारियों ने मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस कर्मियों के शव अपने अपने घरों को पहुंचते ही वहां मारे गए जवानों के परिवार वाले रोने बलकने लगे। इस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। एक स्थानीय समाचार एजेंसी ने जैश के बयान के हवाले से बताया है कि यह हमला हिजबुल जैश ने मिलकर किया है। बीते दिनों चरमपंथियों ने अलग अलग हमलों के दौरान एक अधिकारी समेत 3 पुलिस कर्मियों को दक्षिणी कश्मीर में मारा था। इस दौरान बुधवार देर रात दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में कुछ बंदूकधारियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान के बेटे का अगवा किया है। हालांकि इस खबर की फौरी तौर अधिकारी सत्ता पर पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक बीते 30 वर्षों में अब तक चरमपंथी हमलों या चरमपंथ खिलाफ अभियानों में 1634 जवान मारे गए हैं। बुधवार को दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक टॉप कमांडर अल्ताफ अहमद कचरू समेत 2 चरमपंथियों को मारने का दावा करते हुए बताया है कि मारे गए चरमपंथी सुरक्षा बलों पर कई सारे हमलों में शामिल रहे हैं। दक्षिणी कश्मीर बीते कई वर्षों से चरमपंथ का गढ़ बना हुआ है। बीते 2 वर्षों में सबसे ज्यादा चरमपंथी दक्षिणी कश्मीर में ही मारे जा चुके हैं। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई होने तक इन सभी को रिमांड पर नहीं भेजा जाएगा और अब उन्हें उनके घरों में नज़रबंद रखने का आदेश दिया गया है। जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसी दौरान इन 5 में से 3 अभियुक्तों को पुणे में जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान BBC मराठी के संवाददाता मयूरेश कोन्नूर अदालत में मौजूद थे। हमारे सहयोगी आदर्श राठौड़ ने उनसे पूछा कि अदालत में क्या हुआ।
अदालत में ये जो 3 अभियुक्त हैं, वरवरा राव, गोंजालेस और अरुण परेरा, इन तीनों को लाया गया। इन तीनों पर भीमा कोरेगांव की जो हिंसा हुई थी उससे पहले एल्गार परिषद जो हुई थी और उसके कनेक्शन में पुणे में जो FIR दर्ज है उसके तफ्तीश में आगे जाके इन जो 5 लोगों के नाम आए थे उसने 3 लोगों को अरेस्ट किया था और पुणे लाया गया था। आज कोर्ट में जब शुरू हुई कार्रवाई तब पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि ये सारे तीनों जो अभियुक्त हैं वो CPI माओइस्ट जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए काम करते हैं, जो नक्सलाइट एक्टिविटीज में शामिल हैं और ये सारे लोग जो हैं वो कुछ सालों से इसमें काम कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि एल्गार परिषद जो है जो 31 दिसंबर 2017 को पुणे में हुई थी और उसके बाद दूसरे दिन 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, तो ये जो एल्गार परिषद है ये दिखाने के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम था जो कबीर कला मंच ने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन इसके पीछे सीपीआई माओइस्ट जो है वो काम कर रही थी और उनको अपना प्रोपेगेंडा जो है वो यहाँ पे अर्बन एरियाज में है जो ले जाना था, और इस पूरे नेटवर्क में ये सारे लोग जो है वो शामिल हैं। उनका ये कहना था कि इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कुल 5 गिरफ्तारियां इससे पहले हुई हैं, उनमें उनके पास जो कुछ लेटर्स डॉक्यूमेंट्स मिले इनमें इन सब लोगों के नाम जो है वो आ गए थे, और इनके पास सीपीआई माओइस्ट में कुछ जिम्मेदारी भी है।
इन आरोपों पर बचाव पक्ष का क्या कहना था मयूरेश?
जो डिफेंस है इनके वकील जो है उन्होंने ये सब खारिज किया, उन्होंने किया कि यूएपीए ये जो कलम लगाया हुआ है वो इसमें जरूरत नहीं है, और भीमा कोरेगांव की जो हिंसा है वो दो गुटों के बीच में हिंसा थी, इसमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दोनों तरफ से ये आर्ग्यूमेंट होने के बाद दोपहर तक जब ये कार्रवाई पुणे की कोर्ट में शुरू थी तब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि इनको अभी पुलिस कस्टडी में या फिर रिमांड में नहीं लिया जा सकता, इनको हाउस अरेस्ट रखा जाए 5 तारीख तक, और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि इनको अरेस्ट करना है या नहीं करना है। और फिर कोर्ट में बहुत समय लिया कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और फिर जज ने इन तीनों को शाम में बताया कि आपको हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा, आपको अभी रिमांड में नहीं रखा जाएगा। पुलिस अफसरों ने हमें बताया कि आज इनको अपने अपने घर में वापस लिया लेके जाएंगे, वरवरा राव को हैदराबाद को और गोंजाल्वेज और फरेरा को मुंबई में लेके जाएंगे और वहीं पे हाउस अरेस्ट पे रखा जाएगा।
पुणे की अदालत में दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें दी गईं बता रहे थे बीबीसी मराठी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर। और वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। सर्वप्रिया सांगवान अखबारों के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बताइए सर्वप्रिया।
कुलदीप, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि इसी मामले पर जो अभी भीमा कोरेगांव से रिलेटेड जिन लोगों को पकड़ा था, कल 5 एक्टिविस्टों को, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम इस नवभारत टाइम्स में भी ये हेडलाइन है कि लोकतंत्र का प्रेशर कुकर फटने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, अगर सरकार इसकी इजाजत नहीं देगी तो सेफ्टी वॉल्व फट जाएगा। कोर्ट ने साथ ही 5 एक्टिविस्टों को अगली सुनवाई तक हाउस अरेस्ट में रहने की भी इजाजत दी है।
और एक खबर इसी से जुड़ी हुई सरुप्रिया, मैं जिक्र कर दूं, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है कि वरवरा राव जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके दामाद प्रोफेसर के सत्यनारायण के यहाँ भी पुलिस ने छापा मारा था, और वरवरा राव की बेटी से पूछा, उनका ये कहना है कि उनसे पुलिस और जो लोग छापा मारने आए थे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति दलित हैं तो तुम बाकी परंपराओं का पालन क्यों नहीं करती, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो तो तुम कोई ज्वेलरी यानी कि कोई जेवर और सिंदूर क्यों नहीं धारण करती, ये उनसे पूछा गया, ऐसा उनका दावा है।
और कुलदीप, काफी अखबारों में आज इसी मामले पर एडिटोरियल संपादकीय भी लिखे गए हैं, जैसे नवभारत टाइम्स में और दैनिक भास्कर में। इसके अलावा एक और खबर है कुलदीप की, नोटबंदी के 22 महीने बाद आखिरकार नोटों की गिनती पूरी हो गई है, और इसमें जो बताया गया है, जो आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि जो 99.3% जितने नोट सर्कुलेशन में थे नोटबंदी से पहले वो वापस बैंकों में आ गए, ठीक है, लेकिन दिसंबर 2016 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि 3-4 लाख करोड़ रुपये का कालाधन सिस्टम से निकल जाएगा, ये दैनिक भास्कर ने लिखा है इसमें। और इसके अलावा
जी एक खबर मैं जिक्र कर दूं, इंडियन एक्सप्रेस में ही पहले पन्ने पर है कि आफ्टर मीटिंग बीजेपी प्रेसिडेंट शिवपाल फ्लोट्स फ्रंट, शिवपाल यादव क्या नई पार्टी बना रहे हैं, इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर खबर छापी है, क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जो मतभेद की खबरें थी उसी से जुड़ी खबर।
और एक 2016 में जो जाट आंदोलन जिसने काफ़ी सुर्खियों में था, उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े केसों को वापस लेने पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने जनहित का हवाला देकर 407 मामलों के आरोपियों को केस वापस लेने की इजाज़त दे दी थी।
जी, और एक खबर इंडियन एक्सप्रेस पर यह भी है कि जम्मू कश्मीर में 4 पुलिस वालों की एक चरमपंथी हमले में मौत हो गई है, अभी आपको इस पर खबर भी आपने हमने सुनवाई माजिद जहांगीर की रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए सर्वप्रिया सांगवान। पाकिस्तान में पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान ने एक नया इतिहास बनाया है। बीती 18 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही वो इस पद पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। 26 साल पहले इमरान ने हार की कगार पर खड़ी टीम को उत्साहित करते हुए वर्ल्ड कप जीतने का करिश्मा कर दिखाया। आज पाकिस्तान भी मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में क्या इमरान खान बतौर प्रधानमंत्री भी वही कमाल दिखा पाएंगे और मुल्क की तकदीर क्या बदल पाएंगे, इस बार दुनिया जहान में वात्सल्य राय ने यही पड़ताल की है।
दुनिया जहान।
That's up in the air. He's getting under it. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. ऑस्ट्रेलिया में लिखी गई जीत की ये कहानी अमर है। इमरान अहमद खान रियाजी 25 मार्च 1992 के बाद किसी और मैदान पर ना भी उतरते तो भी पाकिस्तानी इतिहास के सबसे बड़े नायकों में गिने जाते। क्रिकेट के 5वें वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी करिश्माई कप्तानी के जरिए उस टीम को ट्रॉफी जीतने की राह दिखाई जो शुरुआती 5 में से सिर्फ एक मैच ही जीत सकी थी, जिसके खिलाड़ी हौसला हार चुके थे और नाकामी की यादों के साथ खाली हाथ घर लौटने की तैयारी में थे। 26 साल बाद इमरान खान एक और मैदान पर विजेता बनकर उभरे। 65 बरस के हो चुके इमरान ने इस जीत के लिए पूरे 22 साल संघर्ष किया। इस दौरान नाकामी दर नाकामी के बीच आलोचकों ने उनका नाम तक बदल दिया। उन्हें इमरान खांट कहा जाने लगा, यानी इमरान से नहीं हो पाएगा।
मैं इमरान अहमद खान नियाजी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं मुसलमान हूं।
और अब वही इमरान खान पाकिस्तान की सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री हैं। इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी उर्दू के संवाददाता आसिफ फारूकी कहते हैं कि इमरान खान की कामयाबी में मेहनत के साथ किस्मत की भी बड़ी भूमिका है।
पॉलिटिक्स में भी आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान किस्मत के धनी साबित हो रहे हैं। उन्होंने 2014 में धरना दिया जो 3-4 महीने चला, लेकिन वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटाने में या नवाज शरीफ को गिराने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन फिर अचानक पैनमा का एक मुद्दा सामने आया और वो ऐसा आया कि वो नवाज शरीफ को ले डूबा।
किस्मत कुर्सी दिला सकती है, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं। इस जिम्मेदारी को कांटों का ताज कहा जाता है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम हुसैन याद दिलाते हैं,
25 सालों से या 30 सालों से हमारी ये हिस्ट्री चल रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के बाद ओथ लेता है वो प्राइम मिनिस्टर खत्म नहीं कर पाता वो टर्म। अब क्या वो वाली हिस्ट्री टूटेगी? उनकी मेजोरिटी बहुत नैरो है। किस हद तक वो अब रीच आउट कर सकते हैं दूसरी पार्टीज को, ऑपोजिशन पार्टीज के साथ हाथ जोड़ के उनसे कहें कि यार अब हम लोगों ने साथ साथ चलना है, जो भी हो, इस पे बहुत डिपेंड करेगी उनका पॉलिटिकल स्टाइल वो क्या यहाँ से आगे लेते।
पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार मरियाना बाबर नए प्रधानमंत्री की चुनौतियों की बात करती हैं।
ये क्रिकेट नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये है पाकिस्तान जो बड़े अरसे से बहुत से दुश्वारियां चैलेंजेस फेस कर रहा है। सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की दहशत है, यानी इकोनॉमी है जो बड़े बुरे हाल में है।
आम चुनाव के काफी पहले से ही अर्थशास्त्री पाकिस्तान के वित्तीय संकट का मुद्दा उठा रहे हैं। जून 2018 में चालू खाते का घाटा बढ़कर 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इमरान खान भी आर्थिक चुनौतियों की बात लगातार करते रहे हैं।
मैं आज अपनी कौम से अब सबके सामने कहता हूं, मैं आपको सादा तरीन जिंदगी गुजार के दिखाऊंगा, मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा।
लेकिन प्रधानमंत्री के ऐसे ऐलानों को असल चुनौतियों के मुकाबले परखने वाले ज्यादा प्रभावित नहीं है। खुर्रम हुसैन को सुनिए।
ओवरसीज पाकिस्तानी को कॉल फॉर हेल्प भेज दी तो उन्होंने कुछ चंदा इकट्ठा करके जमा कर दिया आपके लिए। इन चीजों से नहीं आपके एक्सटर्नल डेफिसिट्स मीट होते हैं। आपके डेफिसिट्स मीट होते हैं जब आपकी रिमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चढ़ती है और जब आप अपने करेंसी को प्रॉपरली मैनेज कर सके।
खुर्रम हुसैन ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब, चीन और IMF से बेल आउट पैकेज के विकल्प पर विचार कर रहा है, लेकिन वो आगाह करते हैं कि इससे सरकार के हाथ बन सकते हैं। वो बेनजीर भुट्टो का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री का करिश्माई होना मुश्किल खत्म होने की गारंटी नहीं देता। BBC के आसिफ फारूकी।
आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई इलेक्शन के बाद या चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद जिसने कहा हो जी कि हमारा खजाना भरा हुआ है और हमें इकोनॉमिक मुश्किलात नहीं है। हर दफा यही कहा जाता है जी पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, लेकिन हर दफा कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है।
लेकिन चुनौतियां सिर्फ यही खत्म नहीं होती। दहशतगर्दी को काबू करने की चुनौती पर इमरान खान खरे उतर पाएंगे, इस पर भी कई विश्लेषक शक जताते हैं।
अभी भी पाकिस्तान में पनाह लेते हैं दहशतगर्द और यहाँ से सरगर्मी करते हैं हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में। क्या ये इमरान खान बंद कर सकेगा? जो हम इमरान खान को जानते हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, इसकी आवाज़ हमने नहीं सुनी।
मरियाना बाबर ये भी दावा करती हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स यानी ऐसी शक्तियाँ जो सरकार के काबू में नहीं है वो इमरान खान की विदेश नीति को प्रभावित कर सकती हैं।
जो मुझे डर है वो ये है, जब भी पाकिस्तानी वजीर आजम जो इलेक्टेड आता है हाथ बढ़ाता है दोस्ती का हिंदुस्तान के साथ, तो कुछ ना कुछ हम यहाँ से देख लेते हैं। आपने कारगिल देखा, आपने मुंबई टेररिज्म देखा, फिर आपने पठानकोट देखा, तो इस किस्म का नॉन स्टेट एक्टर्स को इमरान खान तो नहीं बंद कर सकता। ये तो आप लिख लें, जो हमारे पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स है वो डायरेक्टली पाकिस्तान की फौज के नीचे हैं।
इमरान खान के लाख इनकार के बाद भी आम चुनाव के दौरान विरोधी लगातार आरोप लगाते रहे कि उनकी पार्टी पीटीआई को फौज का समर्थन हासिल है, लेकिन विश्लेषक सवाल करते हैं कि विदेश नीति के जटिल मसलों पर अगर इमरान खान ने स्वतंत्र दिशा चुनी तो फौज का रुख क्या होगा, खासकर भारत के साथ दोस्ती के लिए दो कदम बढ़ाने का दावा कैसे सच होगा। खुर्रम हुसैन अमरीका और चीन के साथ तालमेल बिठाने को भी इमरान खान के लिए चुनौती बताते हैं।
अब हमारे दौर में एक नया इंग्रेडिएंट शामिल हो गया है, वो चाइना है। पाकिस्तान अभी लग रहा है कि अमेरिका और चाइना के बिल्कुल दरमियान खड़ा हुआ है। इन दोनों मुल्कों की जो राइवलरी है वो हमारे रीजन में ग्रो करने वाली है।
यानी पाकिस्तान के नए सियासी कप्तान के हर कदम पर चुनौतियां हैं। उन्होंने तजुर्बेकार लोगों की टीम तो तैयार की है, लेकिन अगर ये टीम जल्दी ही तमाम चुनौतियों पर जीत हासिल करने का फॉर्मूला नहीं खोज सकी तो इमरान नया पाकिस्तान बनाने का वादा कैसे पूरा करेंगे, अर्थव्यवस्था को कैसे ढर्रे पर लाएंगे और अमरीका और भारत से कैसे रिश्ते सुधारेंगे, ये सवाल हर दिन मुश्किल होते जाएंगे।
मत्सल राय की आवाज में दुनिया जहान आपको कैसा लगा हमें लिखिएगा जरूर। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता में, जहां पर एशियन गेम्स का आज 12वां दिन है और एशियन गेम्स में भारत का झंडा लहराते हुए जिन जिन खिलाड़ियों ने हाल ही में कमाल दिखाया है उनकी सूची कुछ इस प्रकार है। ट्रिपल जंप के एथलीट अरपिंदर सिंह ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। आपको बता दें एशियन गेम्स में मेंस ट्रिपल जंप में भारत को 48 साल बाद गोल्ड नसीब हुआ है। तो वहीं स्वप्ना बर्मन ने हेप्टाथलन में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत को थलन गेम में पहली बार गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। तो वहीं महिला हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम चीन को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और अब भारत गोल्ड की रेस में जापान के साथ भिड़ेगी 31 अगस्त को। तो वहीं पुरुष हॉकी टीम का अभी संघर्ष जारी है, आज उनका सेमीफाइनल मुकाबला है मलेशिया के साथ। क्रिकेट के मैदान पर आज इंग्लैंड और इंडिया का चौथा टेस्ट मुकाबला होगा और ये मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर में स्थित द रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले की सीरीज चल रही है, जिसमें से 3 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। 2 टेस्ट मुकाबले इंग्लैंड ने अपने नाम किए तो वहीं 18 अगस्त को हुए तीसरे टेस्ट मुकाबले को भारत ने अपने नाम किया। इस लिहाज से आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को फिर से शुरू करने का कोई कारण नहीं दिखता है, लेकिन उनके रक्षा सचिव जेम्स मैटिस ने इस हफ्ते की शुरुआत में संकेत दिया था कि युद्ध अभ्यास फिर से शुरू हो सकता है। श्रीलंका की एक अदालत ने पुलिस को देश के सर्वोच्च रैंकिंग सैन्य अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। एडमिरल रविन्द्र पर श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान 11 लोगों के अपहरण और हत्या में कथित तौर पर शामिल अपने अधीनस्थ एक अधिकारी को बचाने का आरोप है। कनाडा और अमेरिका शुक्रवार तक उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते के नए संस्करण पर समझौते की उम्मीद कर रहे हैं। इसी को लेकर इस हफ्ते अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रारंभिक समझौता हो चुका है। अर्जेंटीना की सरकार ने IMF से $50 अरब का कर्जा जल्द से जल्द देने को कहा है। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट ने महंगाई को बढ़ा दिया है। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। अगला प्रसारण शाम 7:30 बजे दिन भर में सुनिएगा। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अब कुलदीप मिश्र को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति और बने रहिए BBCHindi.com के साथ। नमस्कार।